हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अकरम ने अबीर को जोया का पूरा अतीत शुरू से आखिर तक एक एक करके सुनाया था। जोया का नाम उसने अंत में बताया था। अबीर ने जैसे ही जोया का नाम सुना मानो उसकी सांस थम सी गई। जिस कहानी की लड़की के साथ हुए अन्याय को लेकर वो अभी हमदर्दी दिखा रहा था, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत थी। ये बात अबीर राठौड़ को अंदर तक हिला गई थी। जोया खामोशी से बेंच पर बैठी हुई खाली खाली नज़रों से चारों ओर देख रही थी। अकरम द्वारा उसकी कहानी सुनाई जाने पर सब कुछ उसे एक बार फिर से याद आ गया था। ऐसा लग रहा था मानो ये सब जो कुछ हुआ था वो सब कल की ही बात हो। अबीर एकदम से इतने टूट गया था कि उसके लिए अब एक पल भी खड़े रहना भारी हो रहा था, और वो जिस जगह खड़ा हुआ था उसी जगह बैठता चला गया। अबीर कितना टूट चुका था वो उसकी आंखें अच्छी तरह से बयान कर रही थीं। जोया अबीर राठौड़ की मोहब्बत बन चुकी थीं। उस पर एक बार हल्का सा कमेंट करने वाले को अबीर ने उसी वक्त गोली मार दी थी। लेकिन ये क्या, यहाँ तो क्या कुछ नहीं था जो उसकी मोहब्बत के साथ न हुआ हो। अबीर अपने घुटनों के बल गर्दन झुकाकर बैठा हुआ था। उसे देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि उसकी आँखों के साथ साथ उसका दिल भी रो रहा था। अकरम ने रिया की ओर इशारा किया और रिया ने भी हाँ में सर हिला दिया। अकरम रिया को लेकर वहाँ से कहीं और चला गया था। अकरम और रिया ने उन दोनों को अकेला छोड़ने का फ़ैसला किया था। रिया, क्या आपने अबीर जी को सब सच बताकर ठीक किया है? अकरम, नहीं जानता रिया मैंने ठीक किया या गलत, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पर नहीं खड़ा किया जा सकता है। इसलिए मैंने अबीर साहब को सब कुछ सच सच बता दिया, और इससे दो फायदे होंगे। एक, अगर अबीर राठौड़ सच में जोया को चाहता है तो वो उसे आज पूरे सच के साथ दिल से कबूल कर लेगा। लेकिन अगर उसका प्यार जिस्मानी प्यार है या छोटी सोच वाला प्यार है तो ऐसा इंसान हमारी जोया की ज़िंदगी में रहने के लायक नहीं है। सो आज या तो अबीर राठौड़ जोया की ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाएगा या फिर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। अब देखते हैं अबीर राठौड़ का क्या फ़ैसला होगा। तुम आओ, हम लोग अरहम ठाकुर से मिलने अस्पताल चलते हैं। रिया ये सुनकर चौंक गई और एक हल्की सी कपकपाहट उसके जिस्म में आ गई थी। तब अकरम ने अच्छी तरह से उसके दोनों कंधों को पकड़ा और बोला, तुम्हें उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करो कि अब वो तुमसे डरे। एक बात याद रखो, तुम एक इंस्पेक्टर की बीवी हो जिसके अंदर हिम्मत और ताकत की कमी नहीं होनी चाहिए, और जोया को देखो, उसके जितना दुख दर्द तो कोई भी नहीं सह सकता है, लेकिन उसने फिर भी कितनी हिम्मत दिखाई और उस अरहम ठाकुर को इतना मारा कि उसे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। तो फिर तुम अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों मानती हो? तुम्हें याद है एक बार कॉलेज में एग्ज़ाम के वक्त एक लड़के ने तुम्हारे दुपट्टे को भी खींचा था और बाद में तुम्हें लव लेटर दिया था, और तुमने भरी क्लास में उसकी धुनाई कर दी थी। उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें नोटिस किया था। सच बताऊं तो उसी पल तुम मेरे दिल में अपने लिए जगह बना चुकी थीं। सो मेरी रिया कॉलेज में कितनी हिम्मत वाली थी, तो फिर कहाँ गई उसकी वो हिम्मत? देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल के घाव कभी नहीं भर सकते हैं, लेकिन अगर तुम उन पर मरहम नहीं लगाओगी तो तुम्हारा वो जख्म नासूर बन जाएगा, और तुम्हारे इस जख्म का इलाज है अरहम ठाकुर को सजा, वो सजा जो तुम अपने हाथों से उसे दोगी। अकरम की बातें सुनकर रिया के अंदर एक हिम्मत का जन्म ले लिया था, और वो अकरम को देखते हुए बोली, अब चलते हैं अरहम ठाकुर से मिलने हॉस्पिटल। रिया की बात सुनकर अकरम मुस्कुराने लगा था और उसने रिया को कसकर गले लगा लिया था और उसके माथे पर एक प्यारा सा किस किया, और वो दोनों अरहम ठाकुर से मिलने अस्पताल की ओर रवाना हो चुके थे। वहीं दूसरी ओर अरमान को जेल में डाल दिया गया था। उस पर अनुराधा का खून साबित हो चुका था, सारे सबूत उसके खिलाफ थे। अरमान को रह रहकर जेल में केवल मेहर की फ़िक्र हो रही थी, और अब उसे इतना तो यकीन हो गया था कि राजवीर अब उसे इतनी आसानी से इस जेल से नहीं निकलने देगा, जबकि अरमान के सभी आदमी अरमान को छुड़ाने की जद्दोजहद में लग चुके थे। लेकिन कोई लॉयर अरमान का केस लेने को तैयार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि अरमान की पूरी मर्डर मिस्ट्री राजवीर ने आम पब्लिक के लिए लाइव कर दिया था, जिससे लोगों की हमदर्दी अनुराधा के साथ हो गई थी। हर तरफ अनुराधा को इंसाफ दिलाने के लिए स्टूडेंट, सामाजिक कार्यकर्ता और नारी शक्ति संगठन, हर तरह के राजनीतिक लोगों ने अरमान की फांसी की मांग रख दी थी और अपनी अपनी टीम के साथ प्रोटेस्ट किया था। देश भर में अरमान की सजा को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। अनुराधा का रेप और मर्डर दोनों का इल्ज़ाम अरमान पर लग चुका था। चारों ओर इसी बात को लेकर हल्ला मचा हुआ था। ऐसे में कोई भी वकील इस केस में हाथ नहीं डालना चाहता था। सबके सब अपना नाम अरमान के नाम से अलग करने लगे थे। कोई भी अब अपना नाम अरमान के नाम के आगे नहीं जोड़ना चाहता था। जो लोग पैसों के लिए अरमान के तलवे चाटते थे, वो सभी उसके खिलाफ बयान दे रहे थे। अरमान इस बार बुरी तरह से फंस गया था, जिसका निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। अरमान की बनाई हुई इतने सालों की इज्जत अब मिट्टी में मिल चुकी थी। अरमान की रेप्युटेशन का सीधा सीधा असर अब अरमान के बिजनेस पर भी पड़ा था। जितनी भी कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, सब ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। अरमान को पल पल की खबर अंदर जेल में मिल रही थी। चाहे कितने ही लोग उसके खिलाफ क्यों न हो जाएं, लेकिन अरमान की पहुंच अभी भी कुछ कम नहीं थी। उसके कुछ वफादार साथी अभी भी उस पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, जो अरमान को स्मार्टफोन और साथ ही साथ खाने पीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे। बाहर के हालात बुरी तरह से अपने खिलाफ देखकर अरमान खींच कर रह गया था और वो अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था और वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा था कि तभी एक हवलदार ने उसे आकर कहा, कोई तुमसे मिलने आया है। अरमान ने हाँ में सर हिलाया, मानो उसने इजाज़त दी हो कि भेज दो कौन आया है। और अरमान ने सलाखों की ओर देखा तो वो हैरान रह गया था, क्योंकि जो उससे मिलने आया था अरमान उसे नहीं जानता था। अरमान उस अनजाने आदमी को देखकर हैरान था। तभी वो आदमी अरमान के करीब गया और बोला, हेलो मिस्टर अरमान ठाकुर, मेरा नाम शमशेर सिंह है और मैं राजवीर सिंघानिया का चाचा हूँ और साथ ही साथ पूरी खुफिया एजेंट एजेंसी का चीफ हूँ। राजवीर का नाम सुनकर अरमान का पारा सातवें आसमान पर पहुँच चुका था और वो नफ़रत से शमशेर सिंह जी से बोला था, आप उस धोखेबाज के चाचा हैं, क्या लेने आए हैं आप यहाँ? जाओ यहाँ से, मुझे उस राजवीर से जुड़े किसी भी शख्स से कोई बात नहीं करनी है। अरमान के मुंह से राजवीर के लिए ऐसी बातें सुनकर शमशेर सिंह जी का दिमाग कुछ ठनका सा था और उन्होंने बातों को घुमाते हुए अरमान से कहा, ऐसा ही होता है जब कोई पुलिस ऑफिसर किसी क्रिमिनल को अरेस्ट कर लेता है, तब वो क्रिमिनल इस पुलिस वाले से नफरत ही करता है।
तब अरमान शमशेर सिंह जी को घूर कर देखने लगा था और बोला, अगर मुझे किसी पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया होता तो मैं उससे इतनी नफरत नहीं करता, लेकिन दोस्त बनकर मेरी पीठ में खंजर घोंपा है राजवीर ने। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए? उसके हर इल्लीगल काम को मैंने लीगल बनाया। इतना ही नहीं, अनुराधा को उसके बिस्तर तक भिजवाया मैंने, और इतना ही नहीं, अपनी बहन की शादी तक मैंने उससे करवाई। और उसने क्या किया? मेरी बहन, जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, उसका उसने शारीरिक शोषण किया और उसके साथ मारपीट की। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप उसके अंकल हैं ना, तो कह देना उसे जाकर। अरमान ठाकुर हर तरह का धोखा बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अरमान ठाकुर की बहन के साथ उसने जो किया, उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। अरमान ने शमशेर सिंह जी को कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया था, लेकिन बिना कुछ बोले ही अरमान ने शमशेर सिंह जी के सभी शक को यकीन में बदल दिया था। शमशेर सिंह जी को राजवीर पर कुछ डाउट था, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या। और अब अरमान के मुंह से राजवीर का सच जानकर शमशेर सिंह जी के तो मानो होश ही उड़ गए थे। शमशेर सिंह जी तो सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसको वो बचपन से जानता है, जिसकी आंखों के सामने पलकर बड़ा हुआ है, उसका कोई दूसरा रूप भी हो सकता था, और वो भी इतना भयानक, जो औरतों को अपनी हवस का शिकार बना रहा था। और इतना ही नहीं, उसने शादी भी कर रखी थी और उसे भनक तक नहीं लगने दी थी। आखिर परिवार के नाम पर अगर राजवीर का कोई था तो वो सिर्फ और सिर्फ शमशेर सिंह था, और राजवीर ने उससे ही अपनी शादी का सच छुपाया था, और न केवल छुपाया बल्कि अनुराधा का रेप भी कर बैठा था। शमशेर सिंह जी आए तो अरमान के पास किसी प्रस्ताव को लेकर थे, लेकिन अब उन्होंने सोच लिया था। अब जो भी करना था उन्हें सोच समझ कर करना था। शमशेर सिंह जी ने अरमान को एक नज़र देखा और बोला, मैं चलता हूँ मिस्टर ठाकुर, जल्दी ही मुलाकात होगी। वहीं दूसरी ओर मेहर अस्पताल में अपने कमरे में लगे हुए टीवी को देख रही थी और अरमान के खिलाफ न्यूज़ और प्रोटेस्ट देखकर उसकी आंखें भर आई थीं, क्योंकि अब मेहर के पास कोई नहीं था, न कोई उसके आगे था, न ही कोई उसके पीछे। अब अगर कोई था तो वो सिर्फ और सिर्फ मेहर और उसकी तन्हाई और उसमें ढेर सारे दुख और दर्द। राजवीर ने मेहर को अंदर तक इतना छलनी कर दिया था कि अब मेहर कभी किसी मर्द का तसव्वुर अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकती थी। इनफैक्ट किसी मर्द के बारे में वो अब सोच भी नहीं सकती थी।